दूसरा राजा अध्याय 6। भविष्यवक्ता के चेलों ने कहा, तुम सकेत स्थान में रहते हो और तुम्हारे साथ रहना कठिन है। हमें यरीहो में एक घर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए एलिशा ने कहा, जाओ और यरीहो में अपने लिए घर बनाओ। उन्होंने कहा, आकर हमारी सहायता करो। इसलिए वो उनके साथ यरीहो गया। वे लोग वहां पेड़ काट रहे थे कि एक पुरुष की कुल्हाड़ी निकलकर पानी में गिर गई। उसने कहा, ओ नहीं, ये कुल्हाड़ी मैं मांग कर लाया था। एलिशा ने पूछा, वो कहां गिरी है? उसने कहा, वहां पर। इसलिए एलिशा ने एक लकड़ी लेकर नदी में डाली और कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगी और उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अध्याय 6 पद 8। और आराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। जब इसराइल को राजा लौटेगा तब हम उसे घेर लेंगे। एलिशा ने राजा को चेतावनी दी थी कि बेन हदद ने उसे घेरने की योजना बनाई। इस प्रकार उसने इसराइल के राजा को बेन हदद के फंदे से बचा लिया था। ऐसा एक दो बार से अधिक हो चुका था। अतः बेन हदद ने अनुमान लगाया कि उसकी महासभा में कोई तो ऐसा है जो उनके रहस्यों को बाहर भेज रहा है, अर्थात कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हो रही है। अतः उसने अपने सेना प्रधानों को बुलाया और कहा, तुम में से कौन शत्रु की ओर है? उन्होंने कहा, हम में से कोई नहीं है, परंतु वहां इसराइल में एक नबी है। तुम अपनी पत्नी से भी शयन कक्ष में अपने घर में बात करोगे तो वो जान जाएगा कि तुमने उससे क्या कहा है। इस पर उसने कहा, जाओ उसे बंदी बनाकर ले आओ। उन्होंने कहा, वो दोतान में है। अतः आराम की सेना घोड़ों और रथों पर दोतान शहर आई और शहर को घेर लिया, एक बड़ी सेना। वे रात में आए थे, इसलिए सुबह एलिशा का सेवक जागा तो उसने देखा कि आराम की सेना शहर को घेरे हुए थी। वो दौड़कर भीतर गया और एलिशा को जगाकर कहा, हम मारे गए, आराम की सेना ने हमें घेर लिया है। अध्याय 6 पद 16 और 17। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये आत्मिक आंखों का खोला जाना है। इससे हमारे जीवन के दृष्टिकोण पर अंतर पड़ता है। प्रभु हमारी आंखों को खोल कि हम सच्चाई देख सके, ताकि हम भौतिक वस्तुओं को ही ना देखें परंतु हम आत्मिक वास्तविकताओं को भी देख सके। बहुत बार भौतिक चीजों को देखने पर हमारी पराजय दिखती है, परंतु जब तक आप आत्मिक आंखों से देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि विजय निश्चित है। यदि हम शारीरिक और भौतिक चीजों को देखते हैं तो हम डर और निराशा से भर जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति निराशाजनक लगती है। ये तब होता है जब हम प्रत्यक्ष स्थिति को देखते हैं। परंतु पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:18, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इब्रानियों अध्याय 11 में वो पुराने नियम के भक्तों के विश्वास के बारे में कह रहा है। उनके कार्यों और उनके विश्वास को काम में लाने के संदर्भ में वो कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय 27 पद, वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। उनके ये सब सह लेने का भेद क्या था, उसके सामर्थ का भेद क्या था, इन सब हालातों को झेलने की योग्यता का भेद क्या था जिनमें से उनको गुजरना पड़ा, और वे सारे दुख जो उसने सहे, क्योंकि वो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखता रहा। जिन मनुष्यों के पास आत्मिक दृष्टि होती है वे वास्तव में बहुत कुछ देख सकते हैं, इसलिए उनका जीवन इतना स्थिर और सुरक्षित रहता है कि चाहे उनके चारों ओर संसार में उतल पुतल हो रही हो, वे आत्मिक दृष्टि रखते हैं, इसलिए डगमगाते नहीं। अध्याय 6 पद 18 और 19। जब अरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। वो उन्हें समरिया शहर के भीतर राजा के पास ले आया। अध्याय 6 पद 20 से लेकर 31 तक। जब वे शमरोन में आए तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। शमरोन का राजा उत्साह से भर गया क्योंकि उसकी सेना ने आराम के सैनिकों को घेर लिया था। वो नहीं जानता था कि क्या करे। उनको देखकर इसराइल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इसराइल के देश में फिर न आए, परंतु इसके बाद आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। और इसराइल का राजा शहर पना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या कलिहान में से या दाक्रस के कुंड में से? फिर राजा ने उसे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहर पना पर टहल रहा था जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वो बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलिशा का सर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। अब ये बड़ी रोचक बात है कि राजा ही अपने लोगों को मूर्ति पूजा में प्रेरित कर रहा था, जिसके कारण वे समस्याओं का सामना कर रहे थे, परंतु वो दोष परमेश्वर को और उसके सेवक को दे रहा था। मनुष्य कैसा विवेकहीन हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब किसी के सामने समस्याएं आती है तो वो परमेश्वर के सेवक को दोषी ठहराता है। वो सोचता है कि शायद आप उसे बददुआ दे रहे हैं और वो आपसे क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं आ गई है। सत्य तो ये है कि उसने परमेश्वर को त्याग दिया है, इसलिए उस पर समस्याएं आई है। ये मनुष्यों की विवेकहीनता का एक भाग है। यहां भी राजा परमेश्वर के सेवक को दोष दे रहा था, यदि मैं शापात के पुत्र एलिशा का सर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करें। अध्याय 6 पद 32। एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वो दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना, क्या उसके स्वामी के पाव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती। वो दूत दौड़ता हुआ वहां आया, पुरनियों ने द्वार खोलकर उसे वही रोके रखा। उसके पीछे पीछे राजा भी वहां आ पहुंचा।